आज कबला, आज हमारा टॉपिक, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक है आज के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की गैबत में मर्जियत का क्या किरदार है। तो जो है इसको हम लेकर आगे बढ़ेंगे, और ये थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि आम फहम इंसानों के लिए, लोगों के लिए एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। आप पहले तो एक मर्जे की जो है वो डेफिनेशन बता दीजिए कि वो क्या होते हैं, कौन होते हैं और किस तरह हम वहां तक पहुंचते हैं।
जबकि मर्जियत हम देखते हैं कि ये एक अरबी जबान का लफ्ज है जिसको फारसी उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उर्दू एक लश्करी जबान है, मुख्तलिफ जबान से अल्फाज इसके अंदर आए हैं जो कि मर्जे से है। मर्जियत मर्जे भी उस जगह को या उस शख्स को या उस मकाम को मर्जे कहते हैं कि जिसकी तरफ रुजू किया जाता है। ये लफ्ज रुजू से है कि जो कुरान मजीद के अंदर भी आया इस लफ्ज की, और इसी तरह आई है कि जिस जुमले में हम इस्तेमाल करते हैं, और इसको रिवायात के अंदर भी ये इस्तेमाल हुई है। यानी उमूमी तौर पे अगर हम कहें मर्जियत हमारी पूरी जिंदगी के ऊपर, हम मुख्तलिफ अपनी जिंदगी के उमूर के बारे में रुजू करते हैं एक्सपर्ट्स की जानिब, यानी माहिरीन की जानिब। अगर हमें कोई तिब्बी मुश्किल पेश आती है तो हम तिब्बी माहिरीन की तरफ रुजू करते हैं। इसी तरह अगर हमें कोई टेक्निकल मुश्किल पेश आती है तो हम टेक्नीशियंस की तरफ रुजू करते हैं। इसी तरीके से कपड़ों के मामले में कोई हमें मुश्किल पेश आती है, हमें पता है उसके माहिरीन टेलर से, हम उनकी तरफ रुजू करते हैं। अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में जहाँ पर भी हमें मुश्किल दरपेश हैं, सवाल दरपेश हैं, पेचीदियाँ दरपेश हैं, उनके लिए हम फितरी तौर पे और उर्फ के अंदर हम देखते हैं कि लोग एक्सपर्ट्स की तरफ रुजू करते हैं। बस दीन मुबीन इस्लाम के अंदर भी खुदावंद ने एक पूरा निज़ाम बनाया है, हिदायत का निज़ाम। यानी इंसान को अपनी जिंदगी के अंदर इंसानियत के इस मकाम पर पहुंचने के लिए जो हिदायत का निज़ाम है, उसमें उस हिदायत को खुदावंद मुताल ने इंसानों से कहा है कि वो रुजू करें, और जिनकी तरफ रुजू करें उनको या अंबिया की शक्ल में, या मासूमीन अलैहिस्सलाम की शक्ल में, या फिर हमारे जमाने में गैबते कुबरा में फुकहा की शक्ल में पेश किया गया है कि किन की तरफ आप रुजू करेंगे। जब अंबिया मौजूद होते थे तो सबसे बेहतरीन मिसदाक रुजू करने का, हिदायत इंसानी को हासिल करने के लिए अंबिया होते थे। उसके बाद जैसे खत्मे नबूवत होती है, हम देखते हैं कि खुद अंबिया ने इज़्ने इलाही से आइम्मा मासूमीन का तारुफ करवाया कि अब आप दीनी उमूर के बारे में, चूंकि दीन के एक्सपर्ट्स ये आइम्मा मासूमीन है नबी मुरसल व नबी खातम के बाद, तो हमने रुजू किया आइम्मा मासूमीन की तरफ। और इसी तरह से जब इमाम मासूम यानी बारहवें इमाम हुज्जतुल्लाह जब पर्दे गैबत में जा रहे थे तो आपके आबाओ अजदाद यानी दीगर आइम्मे मासूमीन से भी रिवायात है, और खुद इमाम जमाने की रिवायत मौजूद है कि जो भी हवादिस आपको पेश आते हैं उन हवादिस वाकया के अंदर आप फुकाहा की तरफ रुजू करेंगे, और वो उन फुकाहा की तरफ रुजू करेंगे जिनके खास सिफात रिवायात के अंदर आएंगे। तो इस रुजू करने को असरे गैबत इमाम मासूम में मरजियत से ताबीर किया जाता है, या निज़ाम मरजियत से ताबीर किया जाता है कि आप मराजे की तरफ रुजू करेंगे। मराजे यानी वो जिनकी तरफ रुजू किया जाता है या जिनकी तरफ इस्लाम ने, मासूमीन अहले बैत अतहार ने हमें हुक्म दिया कि आप हमारी गैबत में इनकी तरफ। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रुजू करना फकत गैबत इमाम मासूम के साथ खास है, बल्कि हत्ता इमाम मासूम की जिंदगी में भी ये काम होता था, और यही इमाम मासूम हत्ता सैयदुल शुहदा ने भी अपने वकील, अपने नायब, इन फुकहा को मुख्तलिफ इलाकों में, चूंकि इमाम मासूम जाहिरी तौर के ऊपर एक जगह पे होता था, चाहे उनको हुकूमत हासिल हो या हुकूमत हासिल ना हो, अमीर मोमिनी ने अपने जमाने हुकूमत में भी इसी तरह मराजे बनाए और इसी तरह नायबीन बनाए जिनकी तरफ लोग रुजू करते थे। नाम लेके अमीर मोमिनीन कहते थे कि इन मतलब कूफा में इनकी तरफ रुजू करें, बसरा में इनकी तरफ रुजू करें, इसी तरह यमन में इनकी तरफ रुजू करें। इसी तरह आगे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम और इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम के ये रुजू करने वाले अफराद उनकी अपनी जिंदगी में ऐसे थे कि जो आयमा कहते थे कि आप इनकी तरफ रुजू करें, और इस कदर आयमा ताकीद करते थे की तरफ हत्ता अपनी जिंदगी में रुजू करने के लिए, अगर कोई इनको बाईपास करके उस इलाके से इमाम की तरफ मुस्तकीमन डायरेक्ट पहुंच जाता था तो इमाम नाराज होते थे कि तुमने मेरे बनाए हुए नाइब, मेरे शागिर्द, मेरे बनाए हुए फकीह जिसको मैंने मंसूब किया था, तुम उसकी तरफ रुजू क्यों नहीं किया। तो ये पूरा निज़ाम मर्जे जो इमाम की जिंदगी में भी रहता है, और इमाम की जिंदगी के बाद उसकी अहमियत और बढ़ जाती है, यानी इमाम की गैबत के जमाने में।
ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अकबल, आपने एक्सप्लेन किया। आपसे सवाल ये है किबला कि हम अपने मकतब को इमामिया कहते हैं, और तो क्यों इमामत और वलायत को इतनी अहमियत हासिल है हमारे मकतब में?
बिल्कुल, ऐसी मकतब तशैयों का इफ्तिखार है। मकतब तशैयों का ये बहुत बड़ा फख्र है कि उनकी दीन की बुनियाद जो है वो जैसे तौहीद है, इस तौहीद के निजाम का जो हिफाजत का निजाम है वो विलायत और इमामत है। जैसे पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि जब भी कोई नबी कौमों में भेजा जाता है, जब भी खुदावंद मुताला नबी को मुकर्रर करता है तो उसके तीन मनसब होते हैं। एक उनका मनसब नबूवत है, जिस मनसब के तहत वो खुदा से अहकाम और शरीयत इलाही को वसूल करता है, और दूसरा उसका मनसब रिसालत है, जिस मनसब के तहत वो यही शरीयत और ये अहकाम इलाही को लोगों तक पहुंचाता है, और तीसरा मनसब इस पहुंचाए हुए दीन को लोगों की जिंदगी के ऊपर नाफिज करना होता है, जिसको हम इमामत और विलायत से ताबीर करते हैं। अगर ये तीसरा आखिरी काम अंजाम ना पाए तो रिसालत और नबूवत की मेहनत भी वो अपने मकसद तक नहीं पहुंच पाती, बल्कि कुरान मजीद की वो
बिल्कुल
सारी आयत है कि फइन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता, कि नबी पहुंचा दीजिए जो आपके रब की तरफ से नाजिल हुआ है, बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, और अगर आपने ये काम नहीं किया यानी इमामत को नहीं पहुंचाया, ये उसूल इमामत कायदा इबादत मकसद को नहीं पहुंचाया यानी अमीरुल मोमिनीन की विलायत का ऐलान नहीं किया, तो आपने रिसालत का हक अदा नहीं किया। यानी तरतीब के अंदर वो जो दीन मुबीन इस्लाम को माशरे के अंदर नाफिज होना था एक निज़ाम के तौर पर, उसका तीसरा मरहला अगर अंजाम ना पाया, नहाई और आखिरी मरहला, तो इसका मतलब ये है कि वो मेहनत भी जाया हो गई जो रिसालत और नबूवत के तहत हुई थी। इसलिए इमामत और विलायत को इस कदर अहमियत हासिल है। और एक रिवायत भी हमारे पास इमाम मासूम से है कि बुनियल इस्लाम अला खम्स, के इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों के ऊपर है, अस्सलात व सौम व जकात वल विलाया। चार चीजें इमाम ने बयान की कि नमाज है, रोजा है, हज है, जकात है, और फरमाया और विलायत है। और फिर पूछने वाले ने जब सवाल किया कि इनमें से सबसे अहम क्या है, तो इमाम फरमाते हैं कि मा नूदिया इला अहदिन मिसला मा नूदिया इलल विलाया, किसी चीज की जानिब इस कदर दावत नहीं दी गई जिस कदर इमामत और विलायत की तरफ दावत दी गई। यानी इसकी अहमियत हमें यहाँ से अंदाज होती है, चूंकि ये दीन का सुकून है। जिस तरह सैयदा ने अपने खुतबे में भी फरमाया कि बिल इमामत तमाम सलात, बिल इमामत तमाम हज, बिल इमामत तमाम जक़ात, यानी ये जो फुरू दीन भी हमारे पास मौजूद है, अकाम इलाही भी मौजूद है, ये इमामत के साय में कबूल है और तमाम होते हैं। सर अमीर अलमोमिनीन का नहजुल बलागा के अंदर भी इमामत और विलायत के हवाले से उसकी अहमियत को उजागर करते हैं के हवाले से ये हमारे पास मौजूद है। चूंकि इमामियत दीनी हाकिमियत का एक निज़ाम है, जो अंबिया अगर हो तो हजरत इब्राहिम की विलायत और इमामत के ऐलान कुरान में हुआ, हजरत सुलेमान की हुकूमत मौजूद है, और नबी अकरम की मदीना व मक्का के अंदर हुकूमत इस्लामी यानी इमामत और विलायत की हुकूमत मौजूद है, और उसके बाद हम देखते हैं अमीर अलमोमिनीन की वही 4 साल दौर और 6 महीने की हुकूमत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की, देखने के बाद में फिर ये काम उम्मत की नाहेदी की वजह से अंजाम नहीं पाया। तो हुकूमती व सियासी निज़ाम, इज्तिमाई निज़ाम, इमामत और विलायत दीन मुबीन इस्लाम का मौजूद है। पर यहाँ ये भी नुकता वाजे होता चले कि हम जब कहते हैं कि हम इमामिया हैं और हम इमामत और विलायत, तो ये कुरआनी है, यानी तशय्यो कोई किसी अहले सुन्नत या दीगर किसी मकतब के मुकाबले में कोई फिरका नहीं है। तशय्यो मकतब तशय्यो या मकतब इमामिया इस्लाम के उनवान का नाम है, रूह इस्लाम से अपना तारुफ करवाते हैं जो कि इमामत और विलायत।
जी किबला कुछ कहेंगे आप?
बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी तरह इशारा किया, इनकी गुफ्तगू से मेरे जहन में भी एक बात आई कि अगर हम देखें कि इन 100 सालों में ज्यादा मरजियत और फकाहत के खिलाफ मुख्तलिफ साजिशों मुख्तलिफ चीजें हुई हैं, तो हम अगर इसके अंदर गौर करें तो ये वाकई इन्होंने अच्छा इशारा किया कि दुश्मनान इस्लाम की कोशिश थी किसी तरीके से दीन को, इस्लाम को फकत लोगों की इनफरादी जिंदगी तक महदूद कर दिया जाए, कि ये नमाज पढ़ें, रोजा रखें, जक़ात दें, ये अपनी इनफरादी इबादतें करें, लेकिन इज्तमाही तौर पर मुआशरती तौर के ऊपर और सियासी तौर के ऊपर ये कोई काम अंजाम ना दें, यानी कि सियासत को हवाले कर दें जालिम और फासिक कादर हुक्मरानों के, और अपनी शख्सी और निफराती जिंदगी के अंदर फकत इबादतें करते रहें। लेकिन जब इन्होंने देखा कि इनकी फकाहत और मरजियत इस हवाले से प्याम कर रही है, जैसे हमने इराक में देखा, ईरान में देखा, मुख्तलिफ जगहों पर देखा कि इनके मराजे आइम्मा मासूमीन की तरह जालिम हाकिमों से टकराने की बात कर रहे हैं, दुनिया भर में होने वाले जुल्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो यहाँ से ज्यादा इनकी दुश्मनी मरजियत से बढ़ी कि जब इन्होंने देखा कि बात हो रही है तो ये इस मर्जियत का हाथ हमारे गिरबान तक भी आएगा, और ये मर्जियत बेदार कर रही है लोगों को कि वो इमाम जमाना जो पूरी दुनिया के अंदर अदल व क़िस्त का निज़ाम कायम करने के लिए और जुल्म व बर्बरियत के खात्मे के लिए आ रहे हैं, दरअसल ये मर्जियत उसी जमीनों को फराहम करने के लिए हुई है। और इन 100 सालों में हमने ये नमूने मुख्तलिफ ममालिक के अंदर देखे, इस वजह से हम देख सकते हैं कि इनकी शिद्दत दुश्मनी की जो है मरजिए के खिलाफ इसीलिए बढ़ी कि इनको पता था कि अब ये हमें चैलेंज किया जा रहा है इस निज़ाम के जरिए से, जो हमें मासूमीन ने बेहतरीन अपने पर्दे रहते के अंदर बनाया।
बिल्कुल, और मेरा ख्याल है हमेशा ही दुश्मन खौफ सदा रहा है, और तभी उसने हर मुमकिन कोशिश की, कभी जो है वो रोज़ा जो है रोज़े हैं उनके ऊपर हमला किया, और ये उसकी बुजदिली और जो खौफ पाया जाता है दिल में दुश्मन के, उसकी अक्कासी करता है। फिर आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी मैं कि